سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.
مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام میں صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ خیر مقدم کرتا ہوں آپ حضرات کا، تشریف لے آئے. بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، جو حدیث شریف کا جز ہے، لیکن نیتیں کرنے کا ذہن نہیں ہوتا. میں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اگر نیت کا علم ہے تو جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے نہ ثواب ہوگا نہ گناہ، جبکہ وہ کام فی نفسی مباح ہو. اور اگر خدا نخواستہ نیت میں فساد، تو جیسا نیت میں فساد ہوگا ویسا اس کے عمل میں فساد ہوگا. بری نیت، وہ بری نیت اگر گناہ ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نیت اس درجے کی ہے تو پھر اس کو گناہ لکھا جائے گا. تو اس لیے اب جیسے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب مل کر، تو اس میں یہ نیتیں ہو سکتی تھیں کہ علماء کرام کی زیارت کروں گا. الحمدللہ ہمارے علماء کرام بھی تشریف فرمائے، مدرسین بھی تشریف لائے ہیں اللہ کی رحمت سے، صالحین کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. تو اس میں طلباء کرام ہیں جو مطلب قال اللہ وقال الرسول، ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہت اچھا طبقہ ہے، احسن الحمدللہ. انہیں عملی طور پر اگرچہ کمزوری ہو، ہونی نہیں چاہیے، لیکن خود علم دین اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ دیکھیں، عابد ہونا اللہ تعالی کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے نا. تو عالم، اچھا پھر ہر نبی عالم، اور اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم، پھر سید الانبیاء ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم بھی اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور علم حاصل کرنا از خود ایک افضل عبادت ہے. تو یہ طلباء کرام الحمدللہ گویا ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، رائے خدا میں ہے یہ. البتہ اخلاقیات اور عملیات پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ان کو اچھا کردار اور ستھرا کردار رکھنا چاہیے، کیونکہ سفید چادر پر دور سے دھبا نظر آ جاتا ہے. تو یہ سفید چادر ہے، داڑھی بھی ہے، تو امامہ شریف، تو کسی کے سر پہ ٹوپی، تو بہرحال ایک مذہبی حلیہ ہے، وضاحت ہے. تو اس کو لوگ نوٹ کرتے ہیں، एक दाढ़ी मुंडा अगर चौक पर रहकर गालियां भी निकाले तो उसको इतना कोई महसूस नहीं करेगा। इतना एक मजहबी हुलिया का शख्स अगर कह कहा लगाता हुआ बाजारी अंदाज में गुजरेगा, भैया मौलाना को क्या हो गया, लोगों ने यह कहना। तो इसलिए आप हजरात इस मुआशरे का एक जिम्मेदार तबका भी हैं, तो इसलिए वो बहुत मोहतात चलना है, फूंक फूंक कर कदम उठाना है। और जबान की एहतियात तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जबान न जाने कितनों को औंधे मुंह जहन्नम में गिराएगी। जहन्नम में गिराने से पहले भी जबान बहुतों को दुनिया में रुसवा करती है, जलील करती है। और ये तो मैं समझता हूं थोड़ा आप गौर करेंगे तो सबको अंदाजा हो जाएगा कि बोलकर तो कई बार पछताने की नौबत आई होगी, लेकिन खामोश रहकर शायद ही कभी पछताने की नौबत आई हो। फिर भी बोलकर पछताने से ना बोलकर पछताना अच्छा होता है कि उसमें रुसवाई कम होती है, कभी ऐसी कोई बात में वो चुप रह भी गया तो। लेकिन बोलकर जो बाजू का फसाद खड़ा होता है, जो मसाइल खड़े होते हैं बाजू का, तो पूरी पूरी शख्सियत जो है ना एक जुमले की वजह से डैमेज हो जाती है। इस तरह के भी मतलब हैं तजुर्बात मुझे, एक का जुमला ऐसा कभी कोई मुकर्रर बोल देता है तो वो गया, कभी कोई पीर साहब बोल देते हैं वो हाथ से गए, ऐसा होता है। मैं जिन दिनों पंजाब के दौरे में था तो एक शहर में एक शख्सियत थी जिसका कभी तूती बोलता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कोई अपने खिताब में कोई एक जुमला बोला था, उस जुमले का नतीजा ये हुआ, वो रमजान शरीफ का महीना था, कि लोग इतने बदसन हुए कि कहां ईद की नमाज में मस्जिद भर के बाहर सफे बिछती थी, अब वो मस्जिद का अंदरूनी हाल भी नहीं भरा, बस थोड़े से नमाजी उनके रह गए, सारे लोग खिलाफ हो गए। तो एक जुमला आदमी को वो राज दिलाता है या फांसी का फंदा गले में डलवाता है, एक जुमला जबान। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अनु जैसी हस्ती जबान को एक बार मरोड़ रहे थे कि इसने मुझे नाकों चने चबवाए हैं, ये नाकों चने चबवाए हैं, ये मुहावरा है, यानी इसने मुझे बहुत मुसीबतों में मुब्तला किया है, ये आपकी आजजी है। तो आप तो सरापा सदाकत है सिद्दीक जो ठहरे, फिर भी हमारे लिए बड़ी इबरत है। हम लोग जब बोलने पर आते हैं ना, चाहे मंच पर बोले, चाहे माइक पर बोले, चाहे दो मिलकर बात करें, हमारी गुफ्तगू का कोई ठिकाना होता नहीं है न। सच्ची बात यह कि अगर कोई हुस्सास तबीयत का मालिक मेरी ये बात सुनेगा ना, तो शायद उसको ये एहसास उजागर होगा कि यार मुझे तो अभी तक बोलना ही नहीं आया। वैसे बड़ी बड़ी बातें करता हूं, लेकिन हकीकी मानों में शरीयत के मुताबिक मुझे बोलना अभी तक नहीं आया, ये सीखना है। सर बगैर सीखे तो कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए वो हदीस पाक में ना कि जो खामोश तबीयत मोमिन दिखाई दे तो वो जरूर साहिब हिकमत होगा, उसके पास बैठो, इस तरह का मजमून हदीसों में है। तो अब बदकिस्मती से इस तरह की सोहबतें भी कमयाब हैं, अब तो वो जो बोले इन्हें गुफ्तार के खासियों का इस वक्त तो दौर दौरा है। अल्लाह करे कि हम लोग किरदार के खासी बन जाए, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये भी नियत कर लिए कि यहां बैठे बैठे हम इंशाअल्लाह इल्मे दीन हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह हिकमत की बातें सीखेंगे, इंशाअल्लाह अपने किरदार की इस्लाह के मदनी फूल लेकर यहां से उठेंगे इंशाअल्लाह।
रिया ने जैसे जबान की बेहतियातियों के हवाले से बताया, तो अमीरे सुन्नत की बारगाह में ऐसा कि जब हम अपने दर्जे में होते हैं या अपने जामिया में होते हैं तो फिर एक ही कम्युनिटी के होते हैं, आपस में साथ उठना बैठना सोना जागना, और जामिया भी जो है वो एक घर जैसा एक माहौल होता है, तो वहां अगर मस्करी वगैरह हो जाए या कुछ शरारतें वगैरह तो हर्ज क्या है इसमें? थोड़ा रेस्ट बात है, घरों से दूर आए होते हैं और जाना भी जो है बाज़ का पांच पांच छह छह महीने बाद जो है वो घर जाना होता है, तो अगर इस तरह संजीदा रहेंगे खामोश रहेंगे तो फिर घर की याद भी आएगी, तो क्या करें?
खुशगवार गुफ्तगू जो दूसरों का दिल खुश करे और हो जायज, तो इसकी मुमानत तो जाहिर नहीं है ना मैंने की है। अब हमारी जो गुफ्तगू होती है ना वो तंजामेज ले जा, सामने वाले को डिग्रेड करने वाले का अंदाज और एहतराम मुस्लिम से हटकर होती है, तो इस वजह से फसाद होता है। आइए तशरीफ रखिए, माशाल्लाह खैरियत से हैं, ये सुनकर कोई बुरा नहीं मानेगा। अबे इतने दिन से नजर नहीं आता था, बड़ा मसरूफ हो गया, इतना जुमला भी हो सकता है उसको ना करे कुछ जबकि वो बेतकल्लुफ हो, लेकिन आगे जब ये बढ़ते हैं ना, भाई बड़ा आदमी बन गया, ईद का चांद हो गया है, अब कहां आए कहां आएगा, इतने दिन से बीमार हूं तूने मेरी खबर नहीं ली, तो वो फिर जो चूंके चुनाचे शुरू होगा ना, तो फिर वो दिल शिकनिया शुरू हो जाएंगी, फिर अगला भी कुछ ना कुछ आप फूल देंगे तो हो सकता है गुलदस्ता दे मारे फूल का पूरा ही उठा गया, तो यहां शेर के सवा से रोते हैं, तो यूं मसाइल खराब हो जाते हैं। हमारा लेजा नरम नहीं है, एक मुसलमान का एहतराम हमारे अंदाज में नहीं है। एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि मेरे छोटे भाई जो हैं वो मेरी सुनते नहीं है और मतलब वो सेट नहीं है मुझसे, वो तरकीब आउट हो जाती है, तो मैंने कहा यार उसको आप जनाब से बात करें, क्योंकि तू यार छोड़ना यार चुप मरना, ये गुफ्तगू तो छोटा भाई कहां सेट होगा यार, मैंने कहा आप उससे आप जनाब से बात करें। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यार आपने बड़ा अजीब नुस्खा बताया, मेरे भाई मुझसे सेट हो गए। वही तो जबान, आप जनाब से अगर बात करेंगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा, और हम तू तुकार करेंगे तो एक दिन का बच्चा भी जाहिर है कि वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, ये मुबालगा है। एक दिन का बच्चा सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ालिबन इरशाद है कि मजाक मस्करी से वकार जाता रहता है, और वैसे किसी और बुजुर्ग का कौल है कि छोटे बच्चों से मजाक मस्करी से वकार जाता रहता है। तो मजाक मस्करी और चीज है और मिजाह ये और चीज है। मिजाह चंद बार साबित है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कि ज्यादा भी इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मजाक मस्करी जो है ना वो ये होती है कि मस्खरी इस्तेहजा, ये मजाक मस्करी उसको बोलते हैं कि सामने वाले की तोहिन की जाए, उसकी इस तरह की उससे बात उसकी बात की जाए कि इससे उसकी तहकीर लाजिम आए, वो डिग्रेड हो, तो इस तरह का मजाक हमारे यहां होता है। अबे लंगड़े क्या हाल है, अब भले ना वो दोनों टांगों से माजूर है, बुरा तो लगना है उसने, अंधे को भी अच्छा लगाने के लिए लोग हाफिज जी बोलते हैं अगरचे उसने नजरा भी ना पड़ा हो, मेरे के वो तो अब एक अंधे को भी हम अंधा बोलेंगे ना, वो अंधे बुरा तो लगेगा ना उसको, तो इसलिए वो अल्फाज का इंतखाब बेहतर से बेहतरीन अल्फाज बोले जाएं, इस ये गुर जो है ना आ जाए ना तो बंदा हर दिल अजीज हो जाए। मेरे बड़े भाई फरमाते थे मरहूम कि वो तांगे वालों से बात नहीं करते थे, क्यों तांगे वाले अबे ओए अड़े इनकी इस तरह की गुफ्तगू होती है, वो इसलिए बात नहीं करते थे कहीं इसका अंदाज मेरे अंदर अंदर वदीअत ना हो जाए, तो वो बचते थे। बाज अकाबिरीन में से असलाफ में से हुए कि बाहर जाते हुए जब लोग गुफ्तगू कर रहे होते इस तरह की रफ जैसे गुफ्तगू, तो वो कानों को बंद करके गुजर जाते थे कि कहीं कि इनके अल्फाज मेरे अंदर आ जाएं और वो मुझे याद रह जाएं, और फिर तो अब तो खैर इतनी सोचे कहां है। दोबारा लेके तलबा किराम बेशक अपनी बेतकल्लुफी हो, लेकिन हर एक का अपना एक इज्जत नफ्स होती है, उसका एहतराम होता है, अगर इसी हिसाब से बेतकल्लुफी होगी और किसी की हद के इज्जत किसी की तजलील नहीं होगी तो मदीना मदीना कोई हुक्म नहीं लगेगा। दिलादारी करेंगे तो आप बोले नहीं तो हमारी चलती है, वो चलती क्या है, मतलब वो दिल तो उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया तुमने, अब बोलते हमारी चलती है, सबके सामने वो उसको जलील कर दिया, अब वो तुम्हारे शर से बचने के लिए बेचारा मुस्कुरा रहा है, तो तुम समझते हो हंसता है तो ये बिल्कुल मेरी हमनवाई कर रहा है, नहीं नहीं, वो अपनी जेब मिटाने के लिए हंस रहा है, अंदर से वो तुमसे मतलब बज्जन है। हमारा ये है मतलब कि जो जरा वो तेज तर्रार होता है तो लोग उससे डरते हैं, तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब इससे मुत्तफिक है। जैसे कि हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद थोड़ी होता है, सब चूम रहे होते हैं तो वो भी चूम लेता है कि मैं नहीं चूमूंगा तो लोगों की तवज्जो चली जाएगी और समझेंगे ये कोई मुखालिफ आ गया, तो इसलिए वो, तो इसलिए बहरहाल ये कि अपना किरदार बंदा सुथरा रखे, गुफ्तार दुरुस्त रखे, तो दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, और मुसलमान की दिल आजारियों से भी बचा रहेगा, बहुत सारी खराबियों से बचा रहेगा। वरना जेल के अंदर भी अगर हमने जाए ना तो इसमें एक से खर दिमाग मिलेंगे, गुस्से वाले मिलेंगे, और एक तादाद वो मिलेगी कि जिनकी जबान ने इनको बर्बाद किया होगा, भले वो कत्लो गारत गरी तो जबान तो करवाती है, घर तोड़वाती है, तलाक दिलवाती है, घरेलू नाचाकियां जितनी भी हो रही हैं, कमो बेश सब में जबान का ही किरदार है। एक कुछ बोलता है, जैसे सास बोलती है ना बोलने का, बहू बर्दाश्त करने में फेल हो जाती है, वो जवाबी कार्रवाई करती है, तलाक पर नौबत आ जाती है, बाद औकात इस रमियाबी भी में होता है, तो एक बोले भी तो दूसरा अगर सब्र कर ले तब भी बात आई गई हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, और जहां ऐसा गरम का गेवर जहां नहीं है वहां आए दिन फसाद, गीबतें, तोमतें, बदगुमानियां और फिर झूठे मुबालगे और बहुत कुछ हो रहा होता है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
میرا تعلق جامعہ دار العلوم نعیمیہ سے ہے حضور یہ بتائیے کہ علم دین حاصل کرنے کا بنیادی مقصد क्या होना चाहिए, और हम चूंकि तलबा यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं, हमें ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाइए जिन पर अमल करके हम मुस्तकबिल में सही तरीके से मसलक की खिदमत कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।
बहुत उम्दा सवाल है। असल सवाब अगर चाहिए ना तो उसमें तो वो रिजा इलाही का पहलू ही सवाब दिला सकता है, तो इल्म दीन हासिल करने से इन्हें यह नियत करे कि मैं अल्लाह की रिजा हासिल करूंगा, खुद से जहालत दूर करके खुद से जहालत दूर करूंगा और इसके जरिए अपने अकाइद व अमाल का तहफ्फुज करूंगा और मेरी इबादत की जो खामियां है उनको भी दूर करूंगा, इसके जरिए इला कलिमतुल हक करूंगा, अल्लाह ताला का नाम बुलंद करूंगा, इससे मैं नेकी की दावत इसके जरिए आम करूंगा और जो इल्म मैंने हासिल किया वो अहल को सिखाऊंगा, क्योंकि ना अहल को तो इल्म की बात बताना ऐसा जैसे वो खिंजीर के गले में हार डालना, हदीस शरीफ में मिसाल दी गई है, तो जो अहल होगा उसको इल्म की बात मैं सिखाऊंगा, तो इस तरह अच्छी अच्छी नीयतें करें। अच्छा, अब आमतौर पर यह होता है कि इल्मे दीन जो हासिल करता है ना उसको शैतान डालता है वसवसे कि यार तुम इल्मे दीन हासिल कर रहे हो लेकिन इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, यानी ज्यादातर जो दूर है ना हमारे मदारी से इस्लामिया से अवाम, इसकी पजीराई तो है ही नहीं, पजीराई कहीं नहीं है, हालांकि मुफ्त पढ़ाओ, इनको मुफ्त खिलाओ, मुफ्त रिहाइश दो तब भी नहीं आ रहे ना, जबकि दुनियावी यूनिवर्सिटीज या जो भी तालीम इदारे होते हैं भारी फीसें देते हैं, पल्ले से खाते हैं, अगर हॉस्टल है तो शायद उसके भी किराए लेते होंगे और है ना बहुत कुछ उनसे मतलब, फिर भी उसके लिए मरते हैं लोग कि उसका दुनिया भी मुस्तकबिल है, यूं समझते हैं कि है, उलमा का दुनिया भी मुस्तकबिल नहीं है, ऐसा नहीं है, जो अगर कोई आलिम ऐसा सोचता है तो उसकी भूल है, ऐसा नहीं है। कौन सा आलिम है जो यार भूखा मरता है, कौन सा आलिम है जिसकी शादी नहीं होती, कौन सा आलिम है जो फुटपाथ पे सोता है? बल्कि आलिम जितना सुखी है गैर आलिम इतना सुखी नहीं है। ये तो मैं आज से नहीं बरसों से कहता हूं, यानी क्या कहता हूं होता है, ये खुदकुशियां जैसे बढ़ती जा रही हैं। मेरा पुराना चैलेंज अब भी बाकी है कि एक आलिम का नाम दो जिसने खुदकुशी की हो। तुम जिस दुनियावी तालीम को अपना मुस्तकबिल कहते हो, तो पढ़े लिखों की फेहरिस्त मुझसे ले लो, एक जिन्होंने खुदकुशियां की है। एक मतलब सब समझते हैं कि पढ़े लिखे आए दिन खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसको ये पढ़े लिखे बोलते हैं कि कुरान करीम भी देखकर जो ना पढ़ सकता हो वो भी पढ़ा लिखा माना जाता है हमारे। नमाज तो क्या उसको वुजू भी नहीं करना आता, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ने आती, ना उसकी दुआ आती है उसको। नमाज जनाजा में कितने फर्ज हैं ये इसको नहीं मालूम, लेकिन बाबा है पढ़ा लिखा, क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। तो खुदकुशी ये करता है जिसके सीने में इल्मे दीन है, और जो इल्मे दीन का आलिम है, नाम निहाद नहीं, वाकई जो आलिम है, एक नाम मुझे अभी तक कोई नहीं दे सका कि जिसने खुदकुशी की हो। अब बताओ कि मुतमईन कौन है दुनिया में? आलिम जो आलिम दीन है मुतमईन, खुदकुशी करने की उसको नौबत नहीं आती। जो उलमा पर तनकीद करते हैं, उलमा की और गश्त नुमाई करते हैं, खुदकुशी ये लोग कर रहे हैं, अफरा तफरी इनमें मची हुई है, दुनिया की हिरस हवस इनमें ज्यादा है। ऐसे उलमा भी हैं, हिरस हवस वाले भी होते हैं, लेकिन इनकी तादाद और उनकी तादाद में फर्क है, परसेंटेज देखेंगे ना तो फर्क आएगा। जो हराम रोजियां ये दुनियादार कमाते हैं ना, इस तरह की हराम रोजियां उलमा नहीं कमाते होते। आम तौर पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इमामत में जितनी पाक साफ रोजी है ना इमामत में, वो शायद ही किसी और धंधे में हो। आप बताइए, आपको चौपड़ा बनाना पड़ता है, टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, आमदनी छुपानी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, मिलावट करनी पड़ती है, ताजिरों को तो सारे काम करने पड़ रहे हैं, वो इमाम को क्या करने पड़ते हैं? नमाज पढ़ाई चला गया, न किसी ने वो टैक्स का कोई इसको कागजात आते हैं कि हमको टैक्स दो, अपनी आमदनी शो करो, चौपड़े दिखाओ, क्या आमदनी है, क्या बैलेंस है तुम्हारा, कोई कुछ नहीं पूछ रहा उलमा से, यानी अइम्मा किराम से, खुतबा से कहां पूछते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने गुनाहों से इमाम बचा हुआ है, जबकि हो अहल। देखो जहां भी बात आएगी वहां अहल की होगी, जो हल अभी इमामत करते होते वो तो फिर वो जाने उनकी आखिरत का मामला है। जो इसका अहल नहीं है और अगर इमामत के मुसल्ले पर पैसों के लिए खड़ा हुआ है तो वो तो मारा जाएगा, सबकी नमाजों का बोझ उठा रहा है। जो अहल है तो वो तो बड़ा खुश नसीब है। हाँ ये कि इसको भी ये चाहिए कि उर्फ से हटकर छुट्टियां ना करें। उर्फ से हटकर छुट्टी करनी है तो अपना नाइब दे और इंतजामिया को एतमाद में लेकर छुट्टी करे, और नाइब वो दे जिसको ये इंतजामिया कबूल करे, मुक्तदी कबूल करे, ताकि फसाद ना हो, तनफीर अवाम से बचा रहे। यूं मतलब मदीना मदीना इसकी रोजी हलाल रहेगी, और ऐसी हलाल के जिसको अपील नहीं होगी, जबकि इसमें कोई और माने शरी कहीं से दाखिल ना हो जाए। इसी तरह खतीब, इस तरह वाइज, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान करता है और अगर उसकी उजरत भी लेता है, हलाल है मुताखरीन के नजदीक। तो इमामत की उजरत भी मजहब सही पर तो हराम है, लेकिन मुताखरीन के नजदीक हलाल है, जायज। इसी तरह वाइज की भी। लेकिन बहरहाल ये कि इसमें भी बाज सूरतें होती हैं अदम जवाज की, जिसका मैंने अभी जो दो तीन बातें अर्ज की छुट्टियों वाली हो रही। तो दुनियादारी के मामले में अब आप किसी सूदी इदारे के अफसर से मतलब मुकाबला कराओ कि मैं इमाम हूं मेरी तनख्वाह इतनी, वो सूदी इदारे का अफसर है उसकी तो इतनी तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह इतनी सी है, नहीं। वो उस सूदी इदारे में जो काम कर रहा है ये बुराई आपको नजर नहीं आई, और आप अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं, ये आपको नजर नहीं आया اللہ تعالیٰ نے یہ کم انعام کیا آپ پر کہ آپ کو مسجد کی امامت عطا فرمائی. وہ اگر کھربوں روپے بھی ماہانہ کماتا ہے اور آپ کو فاقے بھی ہو رہے ہیں تبھی فضیلت آپ کی ہے جبکہ آپ صبر کریں کہ آپ امامت فرما رہے ہیں. پھر یہ کہ کھربوں پتی وہ سود خور کھڑا ہو اور ایک امام صاحب مسجد سے نکلے کسی کو بچے کو دم کروانا ہے, کس کے پاس جائے گا؟ امام کے پاس ہی جائے گا. اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بچے کی سفارش یہ کر سکتا ہے, یہ افسر نہیں کر سکتا. وہ دستموسی کرے گا تو آپ کی کرے گا, اس کی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھائی اس کی ترکیب بن سکتی ہے, یہ اس کی ترکیب نہیں ہے. تو یوں مطلب اپنا دل تھوڑا نہ کیا کرے. آپ کا مستقبل بہت اچھا ہے, اصل مستقبل ٹھیک ہے, وہ دنیا کا لوگ بولتے ہیں, اصل مستقبل آخرت ہے, قبر, قیامت, یہ ہمارے مستقبل ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے. قارون کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی اس کے خزانے کی, دولت کہاں گئی؟ زمین میں دھنس گیا اور دولت اس کے سر پر سب چلے جائیں گے, غریب بھی چلے جائیں گے, امیر بھی چلے جائیں گے, بادشاہ بھی چلے جائیں گے, فقیر بھی چلے جائیں گے, چلے گئے. آج وہ کسی نے مجھے مزار شریف داتا صاحب کا اور جگمگ جگمگ کر رہا ہے وہ دکھایا وہ سوشل میڈیا پہ, بڑی روشنائی ہو رہی. میں نے کہا تو بادشاہ تو یہ ہے, میں نے کہا یہ بادشاہ ہے. باقی وزیر اعظم بھی جب کرسی سے اترتا ہے کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے. کہ صدیاں بیت گئی حکومت کر رہے, اپنے زائرین کو پانی نہیں دودھ پلا رہے, یہ ان کی شان. اور داتا دربار کی تو یہ شان ہے کہ وہاں 12 مہینے لنگر چلتا رہتا ہے, کئی بھوکے وہاں کے پلتے ہوں گے, اتنا مطلب کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر, اللہ کی عطا سے وہ ہے داتا, جو ٹھہرے داتا مانے دینے والا, دے رہے ہوں. بھر بھر کے جھولیاں لوگ لے جا رہے, آخر سب پاگل تو نہیں ہو گئے نا جو یہ لاکھوں وہاں حاضریاں دے رہے, کچھ تو ملتا ہے نا.
آپ کو بھی کچھ ملا جی وہاں سے؟
وہ مدینے جانا تھا تو میں نے وہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا یہ کلام عرض کیا تھا, تو الحمدللہ میرے حج کے اسباب ہو گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں.
ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا, داتا پیا, داتا پیا, کر دو کرم داتا پیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں کسی سے تو دوران گفتگو جو مخاطب ہیں وہ اپنے مخاطب کے چہرے کی طرف دیکھے یا زمین کی طرف دیکھے؟
چہرے کی طرف دیکھنے میں حرج تو نہیں ہے, فطری امر ہے کہ وہ بندہ چہرے کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے. اس میں فوائد ہیں, اس کی پریکٹس کرے نا کہ چہرے کو دیکھے بغیر بات کرنا وہ اس کے قابو میں آ جائے, قدرت میں آ جائے.
سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے, سر سبز اس گلزار کے یہ پھول